नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखने के फिलीपींस के प्रयासों का समर्थन करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के विकास कार्यों की सराहना की, कहा श्रीलंका को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को अपनाने की जरूरत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यूजीलैंड ने अपनी संसद पर साइबर हमले का चीन पर आरोप लगाया और भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखने के फिलीपींस के प्रयासों का भारत समर्थन करता है। मनीला में आज फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मोनालो के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने और उसे लागू करने का अधिकार है। विदेश मंत्री का यह बयान दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के समुद्री विवाद के मद्देनजर आया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत आसियान देशों की केंद्रीयता, सामंजस्य और एकता का समर्थक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को नियमों पर आधारित शासन के कड़ाई से पालन के कारण इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रगति और समृद्धि पर भरोसा है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले में समुद्री संविधान के तौर पर मान्यता प्राप्त समुद्री कानूनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की 1982 की घोषणा का विशेष महत्व है और सभी पक्षों को इसका पालन करना चाहिए।
As two seafaring nations of the Indo-Pacific, our maritime cooperation holds great potential. Last year, we signed agreements on enhanced maritime cooperation and white shipping. It is appropriate that even today, there is an Indian Coast Guard vessel which is making a port call in Manila. Secretary Manalo and I have discussed our shared interest in ensuring maritime safety, given that our two countries contribute so much to the global shipping industry.
डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व में आ रहे बदलावों को देखते हुए ये आवश्यक है कि भारत और फिलीपींस एक दूसरे के साथ अधिक नजदीक आकर सहयोग करें ताकि नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में विकास का केंद्र बनेगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए विकास कार्य श्रीलंका के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को अपनाने की जरूरत है। श्री सिंघे ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए श्रीलंका को डीपीआई क्षेत्र में सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भारत सबसे अच्छा देश है।
I spoke with Prime Minister Modi when I was there last year, and as a part of our integration, we said we'd like to go with India. You have done so much, and another reason I took India is the country that discovered zero. Where will the world be if you didn't discover zero? Can you come today and show all this? That itself is very, very important for all of us. And to be quite frank, I thought we will copy what India has done as far as is suitable to us.
इस अवसर पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डिजिटल इंडिया पहल के महत्व पर भी जोर दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा की 8 सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के समझौते को लेकर अभी तक अंतिम स्थिति नहीं बनी है। इसके घटक दलों के नेता इससे असहज महसूस कर रहे हैं। राज्य में लोकसभा के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया में 48 घंटे से भी अब कम समय बचा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता मिलकर चुनाव प्रचार करने के संबंध में अनिर्णय की स्थिति में है। राज्य में पहले चरण में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा में मतदान होना है। एक रिपोर्ट।
बिहार में सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक रूप से फैसला नहीं होने से महागठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन में सहयोगी दलों की बिना सहमति के राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह बांटे जाने से टकराव की स्थिति और बढ़ गई है। इस बीच नवादा संसदीय क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी श्रवण कुमार कुशवाहा ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को गया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने 10 से अधिक प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें पहले चरण की जमुई सीट से अर्चना रविदास और औरंगाबाद सीट से अभय कुशवाहा के नाम शामिल हैं। इधर पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया है। इस सीट से राजद पूर्व मंत्री और जदयू छोड़कर आई बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी पूर्णिया सीट से उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। लखीमपुर के सांसद प्रधान बरुआ ने भी इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने आज जोरहाट लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 2 सीटें जम्मू संभाग में हैं और 3 सीटें कश्मीर संभाग में। केंद्र शासित प्रदेश के कुल 20 जिलों में से 8 जिले जम्मू संभाग के जम्मू और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन तथा उधमपुर शामिल हैं।
उधमपुर संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या 24 लाख से अधिक है और कुल 16,74,270 मतदाता हैं। इनमें से 8,26,218 पुरुष और 8,48,059 महिलाएं हैं। ये भारत का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है जहां बेहतरीन बुनियादी ढांचे के साथ 3 मेडिकल कॉलेज और एम्स भी है। इस निर्वाचन क्षेत्र ने न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में पी पर्पल रिवोल्यूशन के जन्म स्थान के रूप में अपना नाम बनाया है। नामांकन पत्र उम्मीदवारों या उनके प्रस्तावकों द्वारा 27 मार्च 2024 तक किसी भी दिन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में दाखिल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से डॉ जितेंद्र सिंह और प्रेमनाथ, बहुजन समाज पार्टी से अमित कुमार और तिलक राज और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वर्णवीर सिंह जलाल शामिल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP ने उधमपुर सीट से अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री GM सरूरी के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं गुलशन रैना।
भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची आज जारी की। पेमा वांगजल रिंजिंग गैंगटोक से पार्टी उम्मीदवार होंगे और अरुणा मुंगेर नामची सिंगी थोंग सीट से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों के लिए 14 उम्मीदवारों की भी घोषणा की है। गुजरात में विजापुर से चतुर सिंह चावड़ा और पोरबंदर से अर्जुन मोडवाडिया को मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति से रवि ठाकुर जबकि राजेंद्र राणा सुजानपुर से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के शोरपुर से नरसिंह नायक राजू गौड़ा पार्टी के उम्मीदवार होंगे और पश्चिम बंगाल के भगवान गोला से भास्कर सरकार और सज्जल घोष बारानगर से उम्मीदवार होंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया है कि पंजाब में भाजपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्री जाखड़ ने बताया कि यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रख रहा है। यह ऐप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए है।
लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में सी विजिल ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन जैसे धनराशि या शराब बांटने संबंधी सूचना मिनटों में कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि यह सी विजिल ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है और 100 मिनट के अंदर कार्रवाई का आश्वासन भी देता है।
तो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्फ्स। आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे।
यह सी विजिल ऐप सतर्क नागरिकों को सीधे जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम से जोड़ता है। इस ऐप का उपयोग करके कोई भी नागरिक राजनीति कदाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट चुनाव आयोग को कर सकता है और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में निर्वाचन आयोग से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी नेता एचएस अहीर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में निर्वाचन आयुक्तों को पत्र लिखा है। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन दोनों नेताओं के अभद्र आचरण से स्तब्ध है जिन्होंने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बारे में भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां की। इस बीच विवाद खड़ा होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों तक बहुत से लोगों की पहुंच है। उन्होंने उक्त सोशल मीडिया पोस्ट हटा देने की जानकारी दी जिसको लेकर विवाद है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। आज प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें अतिरिक्त 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक मार्च निकाला। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा है कि उसने 2021 में देश की संसद में हुए साइबर हमले में संलिप्तता के मामले पर चीन की सरकार को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। इस मामले का खुलासा न्यूजीलैंड की खुफिया सेवाओं ने किया था। जानकारी के अनुसार संदिग्ध साइबर गतिविधियों के जरिए न्यूजीलैंड की संसदीय व्यवस्था को निशाना बनाया गया था। ब्रिटेन और अमरीका ने चीन पर इसका आरोप लगाया था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने इस व्यापक गतिविधि की निंदा की थी। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि इस तरह की विदेशी दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने चीन से भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने मोनेको के ह्यूगो नायस और पोलैंड के जेन जेलेंस्की की जोड़ी को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी का सामना हॉलैंड के सेम वर्बिक और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक से होगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार भारत में मॉनसून जुलाई से सितंबर के बीच चरम पर होगा जिससे भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसमें अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर के लिए दो अलग अलग आकलन किए गए हैं। इससे पहले मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि अलनीनो के कारण इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्मी के बाद अलनीनो के निष्क्रिय होने की संभावना है। वहीं लानीना के कारण भारत में मॉनसून के उत्तरार्ध में अच्छी वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता बरकरार रखने के फिलीपींस के प्रयासों का समर्थन करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के विकास कार्यों की सराहना की। कहा श्रीलंका को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को अपनाने की जरूरत है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यूजीलैंड ने अपनी संसद पर साइबर हमले का चीन पर आरोप लगाया और भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।